जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय शिल गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय शिल भगवत पाद गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना యశోదానందన బ్రజ జనరంజన యమునా తీరవనచారి యమునా తీరవనచారి యశోదానందన బ్రజ జనరంజన యశోదానందన బ్రజ జనరంజన యమునా తీరవనచారి యమునా తీరవనచారి యమునా తీరవనచారి యమునా తీరవనచారి యమునా తీరవనచారి జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారి గోపీ జన వల్లభ గిరి వరధారి జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారి గోపీ జన వల్లభ గిరి వరధారి హరి కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే జయ శ్రీ రాధే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే జగన్నాథ్ జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రా జయ జయ జగన్నాథ్ జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రా గిరిధారీ గోపాల్ గిరిధారీ గోపాల్ గిరిధారీ గోపాల్ గిరిధారీ గోపాల్ గిరిధారీ గోపాల్ జయ గిరిధారీ గోపాల్ గిరిధారీ గోపాల్ గిరిధారీ గోపాల్ గిరిధారీ గోపాల్ గిరిధారీ గోపాల్ జయ రాధా గిరిధారి రాధా గిరిధారి రాధే జయ రాధా గిరిధారి రాధా గిరిధారి రాధే జయ గౌరనితాయ 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 జయ గౌరనితాయ జయ జయ ప్రభుపాద 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 జయ జయ ప్రభుపాద జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वी का श्री श्री गिरधारी जी की जय। नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा जमुना भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू जय गुरु जय गौरांग जय शिल प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 6 सौभरी मुनि का पतन नामक छठा अध्याय और श्लोक संख्या है 39 और 40। यमुनांत जले मग्न तप्यमान परम तप निवृत्तिम मीनराजस्य दृष्टवा मैथुन धर्मिण जातस्पृह नृपं विप्र कन्याम एकाम अयाचत स अपि आह गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे। यमुनांतरजले मग्न यमुनांतरजलेर्मग्न तप्यमानं परं तप निवृत्तिं मीनराजस्य निवृत्तिमिन राजस्य दृष्टवा मैथुन धर्मिना दृष्टवा मैथुन धर्मिना जातस्पृहो नृपं विप्र जातस्पृहो नृपं विप्र कन्याम् एकामयाचत कन्याम् एकामयाचत सो अप्याह गृह्यतां ब्रह्मन् सो अप्याह गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयं वरे कामं कन्या स्वयं वरे यमुनांतरजले मग्ना तप्यमानः परं तपः निवृत्तिं मिन राजस्य दृष्टवा मैथुन धर्मिना जातस्पृहो नृपं विप्र कन्याम् एकामयाचत सो अप्याह गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयं वरे
माताओं में से। यमुना अंतजले, यमुना नदी के गहरे जल में मग्न पूरी तरह डूबकर तप्यमान तपस्या करते हुए परम असामान्य तप तपस्या निवृत्तिम आनंद सुख मीनराजस्य बड़ी मछली का दृष्टवा देखकर मैथुन धर्मिण मैथुन रत जात स्प्रिह मन चलायमान हो उठा नृपम राजा माधान्ता के पास विप्र ब्राह्मण सौभरी ऋषि कन्याम एकाम एक लौती कन्या अयाचत मांगा स उस राजा ने अपि भी आह कहा गृहीयताम आप ले सकते हैं ब्राह्मण हे ब्राह्मण कामम चाहती हैं कन्या पुत्री स्वयंवरे स्वयं चुनाव में स्वयंवर में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में लीन थे कि उन्होंने मछलियों के जोड़े को संभोगरत देखा। इस तरह उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे राजा माधान्ता के पास गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। तात्पर्य, यहां सौभरी ऋषि की कहानी का शुभारंभ होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार माधान्ता मथुरा का राजा था और सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या कर रहे थे। जब ऋषि में कामेच्छा जगी तो वे जल से बाहर निकले और राजा माधान्ता के पास जाकर उन्होंने कहा कि वे अपनी एक पुत्री का विवाह उनसे कर दे। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानिवंतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाख निवंतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। यहां पर इस सौभ्री मुनि की कथा का शुभारंभ होता है, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में पहली लाइन में कि सौभ्री मुनि की कथा का शुभारंभ। थोड़ा विचित्र और विरुद्ध बात लगती है कि एक ऋषि का तपस्या करते हुए पतन हो गया। ये पतन की कहानी है, अध्याय का नाम ही है सौभ्री मुनि का पतन। पतन की कहानी उसका शुभारंभ कैसे हो सकता है? कोई भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, योग कर रहा है और वो अपनी भक्ति में साधना में किसी प्रकार से वो गिर गया। और गिरने का कारण क्या? तो कामेच्छा प्रबल हो गई और उसने वो अपनी तपस्या का जो मार्ग था, योग का मार्ग था, प्रभु प्राप्ति के जो उसके जीवन का लक्ष्य था वो छूट गया। तो ऐसी बात का शुभारंभ कैसे? कहते यहां सौभ्री ऋषि की कहानी का शुभारंभ होता है। भागवत में एक भी विषय या एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो कुछ उसमें मल है। अमल पुराण कहते हैं भागवत को, कि जो इसमें कुछ गंदा है, कुछ अशुभ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हर शब्द, हर पंक्ति, हर वाक्य, हर पन्ना, हर श्लोक, हर अनुवाद, हर तात्पर्य हमारे जीवन को कृष्ण भक्ति और कृष्ण चरण की ओर ले जाने का ही उपदेश है। इसमें इस सौभ्री मुनि की कथा से हमें कुछ दो तीन विषयों पर एकाग्र किया जा रहा है। यहां पर एक योग की प्रबलता, एक उत्कट अवस्था और उस उन्नत हुई अवस्था में भी एक योगी के मन के साथ क्या हो सकता है, दो। तीसरी बात है कि वर्णाश्रम व्यवस्था क्या थी। चौथी बात यह है कि हमें किस प्रकार से माया छल जाती है उत्कट अवस्था में पहुंचने के बाद भी, कि माया कैसे हमें छल जाती है यदि हम कृष्ण भक्ति या कृष्ण सेवा से विमुख होकर अन्य और कोई उपाय करने जाते हैं। कई स्थानों पर, कई पुराणों में ऐसे बताया गया है कि आप कोई भी मार्ग से जाइए, आप किसी भी मार्ग को अपनाइए, आप अंत में भगवान के पास पहुंचेंगे। और कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से जाइए, अंततः आप मेरी पूजा कर रहे हैं। आप पेड़ की पूजा कीजिए, देवी देवताओं की पूजा कीजिए, वो सारे मेरे विश्व रूप का ही एक अंश हैं। आप अंततः अपरोक्ष रूप से आप मेरी पूजा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो प्रत्यक्ष रूप से गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों के अनुसार जो कृष्ण सेवा या कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो माया कैसे छल जाती है उसका उदाहरण है। योग की उन्नत अवस्था क्या है? विश्वामित्र ऋषि मुनि के उदाहरण से इन्होंने सीखा, उनके प्रसंग से उन्होंने सीखा, उन्होंने एक उदाहरण लिया कि देखिए उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की, मेनका आई और उनकी तपस्या भंग कर दी। ये देवता लोग छल जाते हैं, देवता लोगों को भय लगता है कि ये शायद तपस्या करके मेरा इंद्रासन न ले ले या हमारा कोई पद न मांग ले भगवान से या ब्रह्मा जी से या शिव जी से, क्योंकि अगर देवताओं से कुछ चाहिए तो कुछ यज्ञ है, जैसे वृंदावन में चल रहा था इंद्र याग, तो भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, तब देवता चिंतित नहीं होते कोई भी देवता का कि भाई अपने डिपार्टमेंट की बात है, क्या मांग लेगा आखिर में, मांग मांग के पानी मांगेगा, कोई पद मांग लेगा, धन मांग लेगा, हाँ लक्ष्मी जी से कुबेर यंत्र लक्ष्मी यंत्र धन मांग लेगा, गणेश जी से विघ्न को हरने की बात करेंगे, सूर्य से रोग का निवारण बात करेंगे, हाँ धन्वंतरी से औषधि मांगेंगे, शिव जी से कन्या या वर मांगेंगे, दुर्गा से शक्ति मांगेंगे, क्या मांग लेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ मांग लेंगे तो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जब कोई ब्रह्मा जी का या शिव जी का तपस्या करते हैं तो देवता लोग जो हैं बड़े टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या मांग लेगा। ये भौतिक जगत में सुख से रहने के लिए तो सब कुछ हम दे सकते हैं, भौतिक पदार्थ हम सारे दे सकते हैं, तो ये हमसे न मांगकर अभी शिवजी से मांगने जा रहे, इसका मतलब ये साफ साफ है कि कुछ हमारा ही पद मांग लेगा, ये कुछ विशेष बात मांग लेगा। तो वो लोग भेजते रहते हैं, अप्सराओं को भेजते, जाओ फलाने ऋषि की तपस्या भंग कर दो। और अधिकांश प्रसंगों में हम देखते हैं कि जब व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो बहुत कम प्रसंग ऐसे होते हैं कि कोई उसको तपस्या भंग करने का प्रयास किया जाए देवताओं के द्वारा, क्योंकि देवताओं को भय है और देवता जानते हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, अगर कुछ भौतिक वस्तु मांग भी लेंगे तो देवताओं को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि भगवान जो है हमेशा देवताओं का लाभ करके ही कुछ देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि देवताओं का घाटा करके भगवान ने किसी को कुछ दे दिया। हाँ देखिए बलि महाराज ने इतना तपस्या किया, बलि महाराज ने इतना समर्पण किया, तो ऐसा नहीं कि इंद्र को हटाया और उनको बिठा दिया, इंद्र का लाभ करके ही बलि महाराज को वरदान दिया और स्वर्ग से अधिक ऐश्वर्य दिया वहां पर। तो इसलिए ये जो है इन्होंने ये उदाहरण से सीखा कि अप्सरा वगैरह आ जाती हैं हमारी तपस्या भंग करती है, तो ऐसे करता हूं कि मैं पानी में बैठ जाऊं, क्योंकि पानी में आकर के मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने शरीर को योग अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम आदि क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर को ऐसे उपयुक्त बनाया कि वो पानी में बैठ सकें और पानी में से वो प्राणवायु लेकर के या प्राणवायु को स्थगित करके समाधि में वो स्थित हो सकें। ये आसान बात नहीं, हमारा जो ये शरीर है, हमारा मनुष्य का शरीर, ये पानी के उपयुक्त तो नहीं है, कुछ देर रह सकते हैं पर हमेशा नहीं रह सकते हैं। हम लोग देखते हैं, देखिए वर्षा ऋतु के 4 महीने आते हैं तो हमारे पैरों की उंगलियां फट जाती है, नीचे घाव हो जाते हैं, तो हम लोग कुछ क्रीम लगाते हैं, तो जबकि हम लोग 24 घंटा नहीं रहते हैं पानी में वर्षा में, तो भी पैरों की उंगलियां फट जाती है, सड़ जाता है, बास आती है। तो पानी में बैठ ही जाए तो क्या हो, तो हमारा शरीर बिल्कुल इसके उपयुक्त तो नहीं है कि हम पानी में बैठ जाएं। पर उन्होंने योग के द्वारा, सौभरी मुनि ने ऐसे अपने शरीर को उन्होंने बनाया, अपने शरीर को इसके उपयुक्त बनाया योग के द्वारा कि वो पानी में, उनके शरीर को कोई हानि नहीं हुई और वो पानी के जल में जाकर बैठ गए। तो कितने बड़ा योग, उनके पास तपोबल होगा कि वो पानी में बैठ भी गए और सांस ले रहे हैं और वो एकदम एकांत में पानी में बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं और वो तपस्या में एक अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पर समाधि का भी कुछ अवधि होता है, जिसका जितना योग बल ज्यादा उतनी समाधि जो है लंबी चलती है। और बीच बीच में कभी कभी देह धर्म भी आता है, जैसे इस मनुष्य शरीर को हम जितना भी उसको ट्रेन करें, जैसा भी उसको उपयुक्त करें, लेकिन इस भौतिक जगत में ऐसी कुछ संरचना है कि हमें देह धर्म का पालन करना ही पड़ता है। अभी समय कितना लंबा है वो हमारे योग बल के ऊपर आधार करता है कि थकान लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, निद्रा आती है, कुछ तो देह धर्म करना पड़ता है। हमारे गुजरात में एक है चुंदड़ी बाबा, वो चुंदड़ी बाबा ने काठियावाड़ में है, वो चुंदड़ी बाबा देवी के उपासक हैं और उन्होंने पिछले 65 वर्ष से, उनकी उम्र होगी कम से कम 75-80 वर्ष, 75 या 80 वर्ष है, पर पिछले 65 वर्षों से उन्होंने ना कुछ खाया है ना पिया है, कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं, पानी का एक बूंद भी नहीं पिया और कुछ खाया भी नहीं है। और वो देह धर्म जो होता है, थोड़ी सी निद्रा एक दो घंटा ले लेते हैं, पर कभी वो टट्टी पिशाब नहीं जाते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिक, अमेरिका के नासा, नेशनल स्पेस एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के वैज्ञानिक, उन सभी ने एक संयुक्त उनके ऊपर परीक्षण किया कुछ महीने पहले। सारे वैज्ञानिक हैं और पूरे सारे सिस्टम उनके शरीर पे लगाया हुआ है, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर में पेशाब आदि उत्पन्न होता है पर वो वहीं अतड़ियों में घुमा के गायब कर देते हैं, वो थूकते भी नहीं है, उनको थूक नहीं आता है, लार नहीं आती है, कफ नहीं आता है, और पेशाब उत्पन्न होता है एकाध बूंद, कुछ भी खाया पिया नहीं है तो भी, तो अंदर ऐसे अतड़ियों में ऐसे घुमा के वो उसको गायब कर देते हैं। और 15 दिन 24 घंटा ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने और फिर उनको सैल्यूट करके चले गए कि भारत में है योगी लोग, आज भी जिंदा है, आप देख सकते हैं है भारत में ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे योगी हैं। तो इस प्रकार से, पर फिर भी अभी मान लीजिए 65 वर्षों से उन्होंने कुछ नहीं किया, पर हो सकता है 10 साल बाद या 20 साल बाद उनको कुछ देह धर्म तो निभाना पड़ेगा, देह धर्म निभाना ही पड़ता है, ये शरीर का सिस्टम ही ऐसा है, बनाया ही ऐसा है कि उसको कभी ना कभी तो कुछ समस्या आएगी। तो इस प्रकार से कोई समय अंतर से इनकी समाधि छूटी, टूटी नहीं, छूटी, सौभ्री मुनि की समाधि छूटी। और उन्होंने जब आंख खोल के देखा तो उन्होंने देखा कि दो बड़े मत्स्य संग कर रहे, अपने मैथुन धर्म में रत हैं। तो इनको देख करके इनके हृदय में इतने वर्षों से जिन्होंने अपनी समस्त कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया था, देखिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना आसान नहीं है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि अभी मैं एक अच्छा भक्त हूं, इतना साल मेरी दीक्षा हो गई, मेरा जप अच्छा चल रहा है, मेरा नियम पालन अच्छा चल रहा है, एकादशी में निर्जला या पानी पी के करता हूं, दो घंटे भागवत पाठ करता हूं, प्रचार करता हूं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, मंदिर में डोनेशन लाता हूं, सब चल रहा है, फिर भी हम प्रतिदिन या हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में ये अनुभव कर जाते हैं कि हम सब कुछ जानते हुए कोई ना कोई भूल या पाप कर बैठते हैं, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। तो हम लोग इतने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, पर हम लोग कर नहीं पाते हैं। हमारा शरीर किसी न किसी प्रकार से हमें ठग ही लेता है, माया जो है हमें आकर्षित कहीं ना कहीं कर लेती है। वो एक उदाहरण है ना कि जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5ों ज्ञानेंद्रियां इतनी बलवान है, इतनी सशक्त हैं कि कोई एक इंद्रिय भी हमें घसीट के माया में गिरा सकती है, घसीट के, खींच के हमें बिल्कुल पटक सकती है, एकदम पटक सकती है, घसीट के पटक सकती है। जैसे उसके उदाहरण दिए जाते हैं ना कि एक पतंगा होता है, जो कीड़े होते हैं शाम को सूर्यास्त के बाद आते हैं, तो आप कुछ अग्नि जलाइए तो वो अग्नि का स्वरूप देखकर वो इतना आकर्षित हो जाता है कि वो सोचते आह कितना सुंदर चमकीला अग्नि है, मुझे कितनी इसमें मजा आएगी और इसमें कितनी ठंडक मिलेगी, तो एकदम कूदता है उसमें और फन ऐसे फट फट आवाज आती है और कीड़े खत्म हो जाते हैं। नहीं वो अल्ट्रावायलेट मशीन लगी रहती है ना कई जगह, कैसे मच्छर फट 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 मरते हैं। वो बैट भी मिलता है चाइना बैट, है ना, तो कैसे मच्छर मरते हैं फट फट फट। वो तो बेचारे कूदते नहीं है उसमें, एक और सिस्टम है। पर जहां अग्नि लगी रहती है तो एक अग्नि को देखकर वो उसमें फंस जाता है। और प्रत्येक जीव में ये सब प्रकार की कामना है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो चार चीजें ना वो हर प्राणी में हर जीव में है। वो चाहे अंडा देने वाला हो, चाहे बच्चा पैदा करने वाला हो गर्भ से, चाहे वो पसीने से आए, चाहे वो बीज से आए। आहार निद्रा भय मैथुन की इच्छा ये चारों कैटेगरी में है, ऐसा नहीं कि ये अमुक कैटेगरी में नहीं है। मात्राएं कम ज्यादा हो सकती है, समय अलग अलग हो सकता है, या उनके तौर तरीके अलग हो सकते हैं, पर इच्छा वही है, सब में एक समान बनी रहती है। तो वो पतिंगा जो है वो देखकर मर जाता है। फिर वो मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं, तो कांटे में कुछ कीड़े बांध देते हैं, तो जिह्वा के स्वाद के लिए उसमें मछली फंस जाती है, है ना। हिरन को पकड़ने के लिए सपेरा या बहेलिया जो है शिकारी है, कुछ अच्छा बीन बजाता है, तो सुनने के द्वारा श्रवण के द्वारा वो पकड़ा जाता है हिरन आदि पशु। और हाथी जैसे विशाल बलशाली पशु को पकड़ने के लिए एक हथनी को बांध देते हैं पेड़ के साथ, और हथनी तक पहुंचने के रास्ते में बड़ा गहरा गड्ढा खोद के रखते हैं और उसको घास फूस से ढक देते हैं, तो हाथी जो है उसको पकड़ने के लिए उसको दौड़ता और खड्डे में गिर जाता और अपना जीवन नष्ट कर बैठता है। तो स्पर्श के सुख के लिए, है ना, तो कोई श्रवण के लिए, कोई रूप के लिए, कोई गंध के लिए, कोई जिह्वा के स्वाद के लिए, कोई रूप के लिए, ऐसे पांचों इंद्रियां। तो हमारे मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन बहुत उच्च कोटि का जीवन है, सबसे उच्च कोटि का, 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन जो है सबसे उच्च माना गया है। वैसे देवताओं का शरीर बहुत श्रेष्ठ है हमारे से, परंतु मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि वो भगवान का नाम ले सकता है, हमेशा भगवान की सेवा कर सकता है कृष्ण की, और तुरंत भगवत धाम जा सकता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया है। तो मनुष्य जीवन श्रेष्ठ होने के साथ साथ उसको पांचों इंद्रियां बहुत प्रबल दी हैं, तो इसमें स्वाभाविक है कि कब इंद्रियां कब ठग जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी तपस्या और योग करते 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 हम मन पर प्राय नियंत्रण कर सकते हैं, और ये जो सारी समस्या है ना वो मन से ही आती है। इंद्रियों को बल मिलता है मन की इच्छा से। इंद्रियां तो जड़ है, पर इंद्रियां कार्यान्वित होती है, इंद्रियों को बल मिलता है मन से। अगर हमें पैसे कमाने की इच्छा है तो हम 18 घंटे भी काम करेंगे, क्योंकि मन में यह इच्छा है कि मुझे पैसा कमाना है, तो कंप्यूटर पे या ऑफिस में या कहीं भी किसी प्रकार का 18 घंटा आदमी, और लोग कहते भी बड़े बड़े एकदम गर्व से, मैं 18 घंटा काम करता हूं तब जाके इतना पैसा कमाया। तो वो इंद्रियों को बल मिलता है, वो बोलता है मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर कोई मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं 5 बजे उठता हूं, 7 बजे ऑफिस पहुंचता हूं, बंद होने का कोई टाइम नहीं है। और एक मजदूर होता है वो 8 घंटे की ड्यूटी में थक जाता है, अगर 9 साढ़े 9 घंटा काम कराया जाए तो बोनस मांगेगा, ओवर टाइम मांगेगा, क्योंकि उसका मन नहीं है। तो इंद्रियों को बल मिलता है मन से। तो ये मन में जो है, जब तक कृष्ण चरणों के प्रति उत्कट प्रेम, उत्कट अनुराग नहीं उत्पन्न होता मन में, तब तक ये जो हमारी जो इच्छाएं हैं, जिसको हम कहते हैं ना वृत्ति, हमारी इच्छाएं जो हैं ये हृदय में हमारे चित्त में दबी रहती है। जैसे पतझड़ में ग्रीष्म में बहुत तेज हवा चलती है और बहुत पेड़ों से बीज वगैरह गिरता है, तो उससे क्या होता है, उस समय कुछ नहीं होता, ऐसे जंगल में रास्ते में बीज वगैरह गिरते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है तो हम शहरों में भी, इतने पक्के रोड है, इतने पक्के मकान है, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी है, लेकिन हम देखते हैं दीवारों में, सीढ़ियों पर, रास्तों में, फुटपाथ के कोने पर, जगह जगह तरह तरह के पौधे निकल आते हैं। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है वैसे ही अलग अलग पौधे, बीज अंकुरित होकर वो अलग अलग पौधे निकल आते, किसी ने बीजारोपण नहीं किया, किसी ने खत नहीं डाला, किसी ने पानी नहीं दिया, पर अनुकूल वातावरण मिलते ही वो अंकुरित होके अपना विकास शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से जीव की जो वृत्ति है, जो कामनाएं हैं, वो ऐसे योग अभ्यास के द्वारा नियंत्रित हो चुकी हैं। हम लोगों का अनियंत्रित है, हम लोगों का इच्छा कभी भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। योगियों की बात चल रही, जैसे सौभरी जैसे ऋषि मुनि की, इन्होंने अपनी मन की वासनाओं पर, कामनाओं पर, इच्छाओं पर पूर्णतया एक प्रकार से प्राय पूर्णतया नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। और इसलिए अपने शरीर को ऐसे उपयुक्त बनाया कि पानी में बैठ गए और पानी में बैठ करके वो तपस्या कर रहे हैं। पर जैसे देह धर्म आता है, कुछ समय के बाद शरीर थकता है या समाधि थोड़ी देर के लिए टूटती है या छूटती है, और उन्होंने देखा कि दो मत्स्य संग कर रहे हैं, तो पानी में भी उनको प्रबल इच्छा हो गई, उत्कट इच्छा कि नहीं, अब मुझे विवाह करना ही है किसी एक कन्या के साथ। वहां पर उनके इतने वर्षों की साधना, इतने वर्षों की तपस्या उनको रोक नहीं पाई। इसलिए उपदेशामृत में कहते हैं ना, वाचो वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात। कि छह प्रकार के आवेगों की बात कही है ना, वाणी का आवेग, अगर हम लोगों को गुस्सा आ जाता है तो फिर बस प्रथम नाम अपराध भूल जाते हैं। शायद तूफानी नदी का उतना आवेग नहीं होगा। बाढ़ आती है, सैलाब है, सैलाब में भी इतनी शक्ति नहीं होगी, उतनी शक्ति हमारी वाणी में, याद रहे है? कितनी शक्ति है वाणी में, अंधे का पुत्र अंधा बोल दिया तो महाभारत हो गया। शब्द ब्रह्म है, एक एक शब्द सोच के निकालना चाहिए, तो शब्द ब्रह्म है। सैलाब से बाढ़ आती है ना, उससे भी ज्यादा शक्ति है वाणी में है? कितना युद्ध का सैलाब ही आ गया ना महाभारत में, बाढ़ आ गई, कितने लाखों लोग मारे गए। वाचो वेगम जिह्वा वेगम, इतना खाते हैं, इतना खाते, इतना अच्छा लगता है पनीर सब्जी, फीस्ट। हमारे यहां फीस्ट बिना पनीर सब्जी होता ही नहीं है कभी। इस्कॉन में फीस्ट मतलब पनीर सब्जी कंपलसरी, पनीर सब्जी नहीं है तो फीस्ट नहीं है। इवन कोई भी कॉन्ग्रीगेशन के घर में भी अगर कुछ फंक्शन है, गौर निताय का अभिषेक है, जगन्नाथ का पुष्पा अभिषेक है, पनीर सब्जी कंपलसरी। उसके बिना फीस्ट नहीं है, कैसा इस्कॉन भक्त है? पनीर सब्जी नहीं है, पनीर सब्जी नहीं है तो इस्कॉन डिवोटी नहीं। हो कंपलसरी होना चाहिए। तो जिह्वा वेगम, हमारा जिह्वा का आवेग इतना है। वाचो वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम मनस क्रोध वेगम क्रोधा अग्नि तो बाबा, मेरे समान किसी के पास वो पावर ही नहीं है। तो ये जो सारी हैं, ये इच्छाएं, वो एक बीज के रूप में हमारे भीतर, हमारे चित्त में पड़ी रहती है। और हम में से किसी को भी, आपका नहीं, मैं तो अपना कह सकता हूं, कि अनुकूल वातावरण मिलते ही वो कब से फटाफट अंकुरित होता है, कब बड़ा विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, और मुझे वो फल भोगना ही है। अब कितने कितने वर्ष लगे होंगे अपने आप को पानी में बैठने के उपयुक्त बनाने के लिए, कितने वर्ष लगे होंगे अपने शरीर को उपयुक्त बनाया, और फिर कितने वर्षों से पानी में तपस्या की। आगे वर्णन आएगा कि देवताओं के 12,000 वर्ष तक तपस्या की, सौभरी मुनि की इस उपाख्यान में वर्णन आएगा कि देवताओं के 12,000 वर्ष, हमारा 6 महीना, हमारे पृथ्वी का 6 महीना अर्थात देवताओं के 12 घंटे, हमारा एक वर्ष 365 दिन अर्थात देवताओं की एक रात्रि और एक दिन, 24 घंटे का एक दिन, हमारा 365 गुना उनका, देवताओं का एक दिन होता है। तो देवताओं का एक साल कितने दिन का होता है? कौन है मैथमेटिक्स में पावरफुल? मैं तो हमेशा फेल होता था मैथ्स में। तो देवताओं के 12,000 वर्ष हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं, इतने वर्षों तक तपस्या की। मान लीजिए 50-100 साल उन्होंने तपस्या की होगी अपने शरीर को ऐसे बनाने के लिए, योग अभ्यास के द्वारा। और उसके बाद में 12,000 वर्ष देवताओं के, हमारे लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, और एक दिन ऐसे आंख खुली और दो मत्स्य को संग करते हुए देखा और पानी के बाहर तुरंत आए और राजा से कहा मुझे अपनी एक कन्या से विवाह करा दो अब भी इसी वक्त। तो कैसे वो अंकुरित हो गया वो बीज काम वासना का और फटाफट एक विकास भी कर लिया उस पौधे ने कि मुझे अभी फल खाना है। तो कहां गए इतनी तपस्या, इतना मन, कितना कितनी माया शक्तिशाली है, है? कृष्ण भूलिया सही जीव भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटी आधरे, ऐसे झपट ऐसे खींच के पकड़ लेती। वो एक सेकंड में राजा के पास गए और बोले मुझे जाना है। तो हमारे चित्त में वो वृत्तियां पड़ी रहती है जब तक हम कृष्ण सेवा, साधु संग, साधु सेवा, कृष्ण का नाम, ये सब नहीं लेते हैं तब तक ये हमारे जो बीज है ना वो नष्ट नहीं होते। और ये करने के बावजूद भी प्राय जीव में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो शत प्रतिशत प्योर हो जाए, पवित्र हो जाए और कृष्ण दर्शन के उपयुक्त हो जाए। वो तो कृष्ण कृपा करते हैं कि बेचारे ने कितनी तपस्या की, कितना भजन किया, कितना साधन किया, फिर भी 20% या 15% रह गया। छोड़ो 15-20% डिस्काउंट, मैं दर्शन दे देता हूं, मैं कृपा कर लेता हूं। कृष्ण को दया आ जाती है। जीव की क्षमता नहीं है कि अपने आप को वो शत प्रतिशत शुद्ध बना ले, पवित्र बना ले और कृष्ण आ जाए, ऐसे जीव की क्षमता नहीं है। वो तो कृष्ण ऐसी दया करते हैं कि वो उसके चित्त में पड़ी हुई वृत्ति भी नष्ट कर ले। और इसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिया और उनके गालों पर शंख से स्पर्श किया तब उनको ज्ञान आ गया। पहले तो भगवान को देखकर अवाक रह गए ऐसे आ, और आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। शुद्धिकरण प्रोसेस शुरू। नयनम गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैरनिचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। शुद्धिकरण प्रोसेस जो थोड़ा बहुत 15-20% बाकी रह गया था ना वो शुरू हो गया, क्योंकि कृष्ण ने कैसी कृपा की, भगवान ने उनके कपोल पर, उनके गाल पर शंख से स्पर्श कर दिया। पावर को एम्पावर किया, ध्रुव महाराज को एम्पावर किया, लो बेटा अभी शुद्ध हो जाओ शत प्रतिशत। और तब जाके ध्रुव महाराज ने कहा काचन विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थ अस्मिन वरम न याचे, स्थानाभिलाषा तपसोस्थितम तपसोस्थितम स्थानाभिलाषा तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्त देवं मुनिन्द्र गुह्यम काचम विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थ अस्मिन वरम न याचे। भगवान से कहने लगे, भगवान ने कहा मांगो 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 ध्रुव मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से, कितनी बाल अवस्था में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, मांगो मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से। तो ध्रुव महाराज अपनी सच्चाई को प्रकट करे, बोलते क्या भगवान क्या मांगू मैं आपसे, मैं तो कितना एकदम निकम्मा आदमी था कि सौतेली माँ ने अपमानित कर दिया तो मैं अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद मांगने के लिए आया। स्थाना अभिलाषा तपसी स्थितो हम, मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा थी, मैं कोई आपकी भक्ति भजन करने, आपका दर्शन करने नहीं आया था। इस स्थान में मैं जो तपस्या करने के लिए स्थित हुआ तो हृदय में अभिलाषा थी। स्थाना अभिलाषा तपसी स्थितो हम, अहम मैं यहां इसीलिए आया कि कुछ प्राप्त कर लूं, क्योंकि नारद जी ने कहा माने का हरि से मिलता है। तो जैसे शुरू में बताया गया ना कि हरि जब देते हैं तो सब बना के देते हैं और देवता कुछ देते नहीं, दे देते हैं, किसी का कुछ बिगड़ जाए भले। शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया तो पार्वती को देख के शिव जी के पीछे ही दौड़ा भस्मासुर, बोले इसको खत्म करो पार्वती ले लो। तो वो कहते हैं स्थानाभिलाषा तपसी स्थितो हम, और कोई कितनी भी तपस्या कर ले, ध्रुव महाराज आगे चल के कहते कितनी भी तपस्या कर ले, तुम प्राप्त देवम मुनिन्द्र गुह्यम, फिर भी आप अप्रकट रहते हैं, आप गुह्य रहते हैं, आप प्रकाशित नहीं होते हैं, अपना दर्शन नहीं देते हैं देवताओं के लिए और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए। तुम प्राप्त देवम मुनिन्द्र गुह्यम, आप अप्रकट रहते हैं, गुह्य रहते हैं, आप दर्शन नहीं देते हैं जल्दी से। धरती मां गाय का स्वरूप लेके देवताओं के पास गई, देवता सारे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के साथ धरती मां देवता सब गए शिकायत करने क्षीर सागर के इस पार जहां तक उनकी हद है। तो जब पुरुष सुक्त मंत्रों से जब भगवान को बुलाया गया तो भगवान आके दर्शन नहीं दिए, केवल एक प्रकाश दिखाई दिया और वाणी सुनाई दी, भगवान का आदेश सुनाई दिया, दर्शन नहीं हुआ किसी को। तुम प्राप्त देवम, देवम मुनिंद्र गुह्यम, देवता और मुनियों के लिए कहां पानी में बैठे कहां भगवान मिले। तो इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं तुम प्राप्त देवम मुनिंद्र गुह्यम, और फिर भी भगवान आपने कृपा किया, आपने मुझे कृतार्थ किया, तो आपको देखने के बाद आपके दर्शन करने के बाद मुझे समझ में आया कि काचन विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम। हे प्रभु, मैं तो एक टूटे हुए कांच के टुकड़े के लिए आपके पास आया था कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य दे दो, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए मैं यहां आया। वो उसको ध्रुव महाराज कहते टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान। और यहां देखिए एक नगर सेवक का चुनाव हो तो कितने झूठे वादे करते हैं। एक एक दो वार्ड का अगर किसी को नगर सेवक बनना है एक वार्ड का, तो क्या क्या नहीं करते हैं, झूठा बोलते हैं सब, और कितने पाप करते हैं, कितना दंगा फसाद करते हैं। और वो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य कहते हैं टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान। काचन विचिन मन पर प्रभु भगवान को देख के देखिए शुद्धिकरण का प्रमाण देखिए कि शत प्रतिशत शुद्ध हो गए। कहते हैं काचन विचिन मन अपि दिव्य रत्नम, पर जाने दीजिए मुझे तो दिव्य कोहिनूर का हीरा मिल गया, टूटा हुआ कांच का टुकड़ा क्या करना है अभी, आपके रूप में मुझे कोहिनूर का हीरा मिल गया। काचम विचिन मन अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थ हो, हे स्वामी मुझे आपने इतना कृतार्थ किया, वरम न याचे, अभी मुझे वरदान नहीं चाहिए, कोई वर नहीं चाहिए, बस आपके चरण कमल की भक्ति चाहिए। भगवान ने कितना मनाया तब जाके ध्रुव महाराज अपने पिता के राज्य में गए और 36,000 वर्ष तक राज्य किया। समझाना पड़ा उनको, मनाना पड़ा, नहीं 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 आप राज्य लो, आप राज्य करो, जिस इच्छा के लिए आए थे वो इच्छा पूरी करो। देखिए कृष्ण की शरण में जाने का कितना लाभ, भौतिक इच्छाएं भी पूरी होती है, भगवान की कृपा आशीर्वाद संरक्षण ये भी मिलता है, अपनी इच्छा भी पूरी होती है और अंत में भगवत धाम भी जाने मिलता है, मुक्ति भी मिलती है, है? और शौबरी मुनि के हाथ में क्या लगा, काम वासना, मछली को देखा तो बोले चलो चलो मैं जाता हूं। तो यह लक्ष्य नहीं है जीवन का। और बाहर जाके राजा से क्या कहा, राजा मुझे आपकी एक कन्या से विवाह करा दो। तो थोड़ा सा हम लोग अभी जैसे योग जो चार पांच पॉइंट कहे थे तो दो पॉइंट पूरे हुए, जैसे योग, योग की उत्कट अवस्था और भगवान के चरण कमलों की भक्ति को छोड़ के योग में क्या परिणाम मिलता है वो तो हमने देखा, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि राजा के पास गए और सीधा मांग लिया जाकर कि मुझे आपकी कन्या से विवाह करा दो, तो समय की वर्ण व्यवस्था क्या होगी। आज किसी कंपनी के एक बड़े डायरेक्टर से, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलना है तो पहले पीए से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसका उद्देश्य बताना पड़ता है, हैं? तो राजा के पास उसका कोई पीए तो होगा ना, मंत्री संतरी तंत्री कुछ तो होगा, उसको बताया होगा ना कि मैं आया हूं तपस्या कर रहा था और मुझे राजा की कन्या से विवाह करना है। ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है, झूठ बोलता है वो ब्राह्मण नहीं है। तो उसने बता दिया तो राजा को भी बताया होगा, तो राजा ने कहा ठीक है बुलाओ। तो कितनी सुंदर व्यवस्था होगी वर्ण व्यवस्था कि प्रजा में से कोई भी व्यक्ति राजा के पास जाकर मांग सकता है कुछ भी, राजा का अपना भी कुछ मांग सकते हैं, राज्य दे दो, कन्या दे दो। और ब्राह्मणों में भी शिष्टाचार होता था, यह नहीं कि कुछ ऐसा मांग ले कि वो मना कर दे, है ना। जैसे पुलत्स्य ऋषि ने शिवजी के घर का वास्तु पूजन किया, पार्वती जी ने बहुत हटकी, सभी देवी देवताओं के पास में घर है, हमारे पास में घर नहीं है, मुझे सुनना पड़ता है सब जगह, कहीं भी देवताओं के फीस्ट में जाती हूं वहां भी फीस्ट होता है, गौर निताय का अभिषेक होता है, जगन्नाथ का पुष्पा अभिषेक होता है, पनीर सब्जी होती है, तो खैर मैं पनीर सब्जी के पीछे नहीं पड़ा हूं, माफ करना। ऐसे ही निकल गया। तो बोले मुझे हर जगह नीचा देखना पड़ता है, सभी इतने अच्छे गहने पहन के आते हैं, देवी देवता सबके घर होते हैं और आपका तो घर ही नहीं है, मुझे घर चाहिए। शिव जी ने कहा देवी आपके भाग्य में नहीं, रहने दीजिए। बोले नहीं मुझे चाहिए। शिव जी ने बहुत सुंदर विशाल सोने की नगरी बनाई और पुलत्स्य ऋषि को बुलाया वहां पर वास्तु पूजन करने, गृह प्रवेश करने, और हो गया सब अच्छा से। पार्वती जी बहुत खुश थी। पुलत्स्य ऋषि को पूछा अंत में क्या चाहिए, दान और दक्षिणा। देखिए ध्यान रखिए, हम लोग सब दान दक्षिणा कुछ पैसा देके छुट्टी, ऐसे नहीं। दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है ना। दान होता है भूमि दान, वस्त्र दान, अन्न दान, और दक्षिणा होती है सोने के सिक्के, रत्न, पैसा, ये सब दक्षिणा। तो दान दक्षिणा होता है। तो शिव जी ने पूछा पुलत्स्य ऋषि से कि आपको क्या चाहिए दान में, दक्षिणा में क्या चाहिए। बोले आपका ये महल दे दो। वो ले गए पूरा। और पुलत्स्य ऋषि ने अपने बड़े पुत्र कुबेर को दे दिया, कुबेर से रावण ने ले लिया। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण की कैसी वर्ण व्यवस्था कि वो शिष्टाचार जानते थे कि क्या मांगना चाहिए। तो उन्होंने मांगा और राजा भी देखो कितना शिष्ट है। राजा ने कहा ठीक है ऋषिवर, आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, पर ऐसा है कि मेरी 50 कन्या है और 50 कन्या को यह अधिकार है कि वो अपने स्वयंवर में अपने इच्छित वर को चुने। इसको समझना है ध्यान से। वैदिक समय में, वैदिक युग में, प्राचीन युग में कैसी व्यवस्था थी। आजकल बहुत सारी नारीवादी संस्था आजादी के नाम पर बहुत नारे लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और मनुस्मृति को भर्त्सना करते हैं कि मनुस्मृति खराब है, नारियों का शोषण किया है, स्त्रियों को दबाया है। ऐसा नहीं है। यहां पर राजा क्या कह रहे हैं, एकदम कितने युग पहले की, सतयुग की बात है लगभग प्राय। राजा ने क्या कहा, जैसे सीता स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर है ना, त्रेता युग, द्वापर युग सभी में। तो उन्होंने क्या कहा, मेरी पुत्रियां अपना पति स्वयंवर में चुन सकते हैं, आपको मेरी 50 में से जो भी पुत्री आपको पसंद कर ले आप उसको ले सकते हैं। क्योंकि राजा ने देखा ये एकदम बुढ़ा हो गया है, आगे आएगा वर्णन, ये एकदम बुढ़ा हो गया है। एक पिता का दिल तो जलता है ना, एकदम बुढ़ा और सुख के कांटा हो गया, इतना योग किया है, इतनी तपस्या, ये सुख के कांटा हो गया, बाल सारे सफेद हो गए हैं, इसके पास भी घर नहीं है शिव जी जैसा, ये तो पानी में रहता था इतने सालों से, इसके पास चलो धन वगैरह तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये मेरी कन्या को, मेरी युवा कन्या को, सुंदर कन्या को, एक विवाहिता इच्छित कन्या को ये क्या सुख देगा। तो राजा ने भी बहुत युक्तिपूर्वक उनको जवाब दिया, ना नहीं कहा, बोले आप 50 में से किसी को भी ले सकते हैं जो कोई आपको अपने स्वयंवर में पति के रूप में चुन ले। और कन्याएं भी ऐसे सुशिक्षित होती थी पहले के समय में कि ऐसा नहीं कि पड़ोस में मुसलमान रहता है उसका हाथ पकड़ के भाग जा, नहीं तो जीसस ने बाइबल में कहा यू लव योर नेबर, तो मिनी स्कर्ट वाली का हाथ पकड़ के भाग जा। एक ही प्रकार का लव नहीं है। लव जो है प्रेम की व्याख्या, बहुत बड़ी बृहद और सुंदर व्याख्या है, प्रेम शब्द की व्याख्या। नहीं नहीं नहीं, जीसस तो बोले बाइबल में यू लव योर नेबर्स, तो खाली हाथ पकड़ के भाग जाने के लिए ही लव करना है क्या, और कुछ नहीं है प्रेम। तो ऐसा नहीं है, प्रेम की व्याख्या बहुत सुंदर है। तो कन्याएं भी मर्यादा में रहकर, हां जैसे पितामह भीष्म विचित्र वीर्य के लिए अंबा, अंबालिका और अंबा को लेकर आए युद्ध करके, और उसमें शाल्व नरेश को परास्त किया, तो शाल्व नरेश जो है, अंबा जो है उसे प्रेम करती थी, तो उसने आकर के जब सत्यवती से कहा कि माता मैं मनोमन शाल्व राजा को अपना पति मानती थी, तो स्वयं पितामह भीष्म ने व्यवस्था की, जाओ तुम अपना विवाह उससे करो। तो जो भी कन्याएं प्राचीन युग में अपने मन में भी किसी को वर के रूप में चुनाव करती थी, तो यह नहीं कि वो हाथ पकड़ के भाग जाती थी, कोर्ट मैरिज कर रही थी, वो अपने पिता से, अपने बड़े भाई से निवेदन करती थी। ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी। जैसे रामचंद्र जी, राजा कैसे प्रजा का पुत्रवत, प्रजा मतलब पुत्र, अपनी संतान है, तो कैसे प्रजावत या प्रजापालक राजा होते थे। रामचंद्र जी को पता चला कि प्रजा में ऐसी बातें घूम रही हैं, यद्यपि अग्नि परीक्षा करके लाए हैं सीता को, इस पर भी ऐसी बातें चल रही है। गुप्तचरों ने आके बताया, जब धोबी के ताने की बात आई कि मैं कोई थोड़ी राम हूं जो एक साल सीता रावण के यहां रही फिर भी मैं स्वीकार कर लूं, हाँ तो मैं नहीं रख सकता, उसकी स्त्री को एक रात्रि के लिए भी दंड दे दिया, गृह घर से बाहर निकाल दिया, बोले मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। तो जब रामचंद्र जी के पास बात आई तो रामचंद्र जी ने कुछ गुप्तचरों को भेजा, तो देखे कि कई जगह ऐसी बातें चल रही है, चौराहे पे चर्चा चल रही है। तो रामचंद्र जी ने कहा ये तो एक बहुत खराब बात है ये मेरे शासन के लिए, है ना, क्योंकि राम राज्य कैसा था, राम के राज्य में न आधी व्याधि जरा ग्लानी दुख शोक भय क्लमा मृत्युंश्चम अनिच्छताम नासित राम राज्य अन्य अधोक्षजे। इसी नवम स्कंद में आएगा आगे लास्ट श्लोक नवमे, जब ये रामचंद्र जी का चरित्र आएगा इस नवमे श्लोक में, तो लगभग सेकंड लास्ट या लास्ट श्लोक है, न आधी व्याधि, कोई आधी नहीं व्याधि नहीं, न आधी व्याधि जरा ग्लानी बुढ़ापा नहीं, न आधी व्याधि जरा ग्लानी कोई दुख नहीं। राम राज्य में नौ प्रकार की चीजें नहीं होती थी, नौ चीज राम राज्य में नहीं होती थी, बाकी सब होता था। तो कैसे, न आधी व्याधि, व्याधि माने रोग, न आधी व्याधि जरा यानी बुढ़ापा, ग्लानी दुख शोक भय क्लमा, क्लमा माने क्लेश, न आधी व्याधि जरा ग्लानी दुख शोक भय क्लमा, और नौवा क्या था, मृत्युंश्चम अनिच्छताम नासित, जब तक किसी की इच्छा ना हो तब तक मृत्यु भी नहीं आता था। मृत्युंश्चम अनिच्छताम नासित राम राज्य अन्य अधोक्षजे। तो ऐसा कहां हो सकता है राम राज्य, कुछ वर्ष पहले एक पॉलिटिकल पार्टी जोर जोर से नारा लगा दी थी हम राम राज्य लाएंगे, इसमें से एक भी नहीं ला सकता है, इन नौ में से एक को भी नहीं हटा सकता है। राम राज्य की नौ बातें छोड़ दो एक भी, कि चलो आप पूरी प्रजा को शोक नहीं होगा, ऐसे हो सकता है? शोक का अर्थ क्या होता है, कि पिता के कंधे पर या दादा के कंधे पर पुत्र या पौत्र की अर्थी जाए उसको शोक कहते हैं, और यह कलयुग में होता है, महाभारत से यह शुरू हुआ कि पिता के कंधे पर पुत्र की या दादाजी के कंधे पर पौत्र की अर्थी जाए इसको शोक कहते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था वैदिक युग में, महाभारत से पहले, कि पिता के पहले पुत्र मर जाए या पौत्र मर जाए, ऐसे नहीं होता था, प्राय ऐसे नहीं होता था, यह सब कलयुग में ऐसे होता है। तो रामचंद्र जी ने क्या किया, सीता को देश निकाल कर दिया। तो ये इस प्रकार से प्रजावत पुत्रवत पालन करते थे। तो राजा माधान अपना राजा माधानता ने क्या कहा, सौभरी ऋषि से मेरी एक कन्या से विवाह कर लो, पर वो ना नहीं कह सके भय से, ब्राह्मण है तपस्वी है योगी है, एक श्राप देंगे सब नष्ट हो जाएगा, और केवल भय नहीं सम्मान भी है। उस समय की वैदिक प्रणाली थी, जीवन प्रणाली, हाँ ये पूरा जीवन प्रणाली इस प्रकार से वेदों पर आधारित होता था कि ब्राह्मण कुछ भी मांग ले तो उसको देना है। तो इसलिए राजा ने कहा मेरी एक कन्या से विवाह कर लो, जो भी तुमको अपने स्वयंवर में चुन ले। फिर आते हैं वापस लौटकर तपस्या के विषय पर। तो इस प्रकार से हम लोग रामचंद्र जी की कथा में देखेंगे कि वेदों में एक आदेश रहते थे कि किस युग में क्या करना है और कैसे अपना उद्धार करना है, और कभी भी उसमें आगे पीछे नहीं चलाते थे। जैसे इसी रामचरित्र में उत्तरकांड में आता है कि एक बार राम राज्य में यह सब आने लगा, नौ चीजें नौ वस्तुएं आने लगी राम राज्य में, तो रामचंद्र जी बड़े चिंतित हो गए कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे राज्य में। तब वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने सबने रामचंद्र जी को बताया कि कहीं कोई गलती हो रही है धर्म पालन में। तो रामचंद्र जी ने चारों दिशाओं में अनुचर भेजे, लेकिन एक भी व्यक्ति धर्म अधर्म करता है या पाप करता है ऐसा नहीं मिला, एक भी व्यक्ति। तो बड़े चिंतित हो गए। फिर रामचंद्र जी ने दोबारा सारे दूतों को भेजा, तो उन्होंने कहा कि पता चला कि दूर 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 कहीं उत्तर में हिमालय के किसी कोने में एक शूद्र व्यक्ति पेड़ में उल्टा लटक के नीचे अग्नि जला के तपस्या कर रहा है। हिमालय के किसी कोने में एक शूद्र व्यक्ति ऐसा पेड़ में उल्टा लटक गया योगी मुनियों की तरह और नीचे अग्नि जला के तप कर रहा है। रामचंद्र जी तुरंत रथ पे सवार हुए और वहां पहुंचे और तलवार के एक झटके से उसकी गर्दन काट दी। बोले पहले तो इस युग में त्रेतायाम यजतो मखे, इस युग में पहले तो ये विधान नहीं है कि तपस्या करें, और शूद्रों का अधिकार नहीं है तपस्या करने का, तो ये राम राज्य में वैदिक नियमों का उल्लंघन संभव नहीं है। उन्होंने शूद्र की गर्दन काट दी और फिर सबसे सब ठीक हो गया। तो वैदिक नियम कैसे होते थे, वर्णाश्रम धर्म कैसे होता था, राजा कैसे पालन करते थे, तो उस शूद्र को तपस्या, शूद्र का अधिकार था कि उपले तीन वर्णों की सेवा करें और भगवत धाम जाए, ब्राह्मण के घर जाए सेवा करें, ब्राह्मण की, ब्राह्मण का घर साफ करे, पानी ला के दे, फूल बटोर के दे, लकड़ी ले आए जंगल से, कुछ भी कर सकता है क्योंकि ब्राह्मण लगा रहता है। पर वो ब्राह्मण बन गया और वो तपस्या करने लगा तो उसको खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से हृदय में जितनी भी कामनाएं हैं, ये जब तक हम कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, गुरु और शास्त्र के मार्गदर्शन में नहीं करते हैं, वो चित्त से वो जाती नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक प्रसंग आता है कि महाप्रभु प्रतिदिन श्रीनिवास आंगन में कीर्तन करते थे और जिनको महाप्रभु की आज्ञा होती थी वही लोग उस श्रीनिवास आंगन में दरवाजे खिड़की बंद करके वो कीर्तन में सम्मिलित हो सकते थे और कृष्ण प्रेम की वर्षा का भरपूर लाभ उठा सकते थे। महाप्रभु की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था और कोई भी व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा सकता था। एक दिन वहां पर एक ब्रह्मचारी था गोपाल, वो केवल दूध पी के रहता था, अपने जीवन में केवल गाय का दूध पीता था। बोले मेरे जीवन में कोई विकार नहीं आना चाहिए, ये अन्न मरी मसाले फ्राई किया हुआ ये सब खाने से शरीर में विकार आते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती है, सौभ्री मुनि भूखा रहा, वो विश्वामित्र ये किया, मैं केवल गाय का दूध पीऊंगा, दूध बड़ा सात्विक है और बुद्धि को बहुत सूक्ष्म और सशक्त बनाता है, आध्यात्मिकता के लिए गाय का दूध बहुत ही उपयुक्त है, गाय का दूध ही बहुत ही हमें लाभदायी है भक्ति के लिए। तो गोपाल ब्रह्मचारी गाय का दूध ही पीता था और कुछ नहीं, बस जब से उसको समझ में आई कई वर्षों से वो दूध पीता था। तो उसने भक्तों से बार बार विनती की, बार बार अनुनय किया कि मुझे, मैं देखो एक शुद्ध ब्रह्मचारी हूं और मैं कृष्ण की भक्ति करना चाहता हूं, मुझे महाप्रभु का प्रेम चाहिए, तो आप मुझे एक बार सम्मिलित कीजिए। तो सभी लोग मना करते थे, हाँ श्रीनिवास आचार्य, अद्वैताचार्य सभी बोले नहीं नहीं महाप्रभु नाराज हो जाएंगे, आप नहीं। तो लेकिन बार बार वो विनती करता था, तो एक बार इन सब भक्तों को दया आ गई, भक्त दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, वो कभी कभी खतरा उठा लेते हैं। प्रभुपाद जी कई जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त कई बार अपने भक्तिमय जीवन को खतरे में डाल करके भी इस हरे कृष्ण आंदोलन को प्रचार और प्रसार करने के लिए वो लोग बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हैं। कई बार प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य कि भक्त लोग कई बार खतरा उठा लेते हैं, तो इसलिए इन भक्तों ने थोड़ा सा खतरा उठा लिया और उस गोपाल ब्रह्मचारी को छिपा दिया कहीं, और शाम को प्रतिदिन की भांति यहां कीर्तन होने लगा। तो महाप्रभु को वो जो उत्कट कृष्ण प्रेम प्रकट होकर जो उनको जो आनंद आता था वो आज थोड़ा सा बाधा आने लगा, हुआ नहीं। तो महाप्रभु बार बार पूछने लगे, एक क्या क्या मिस्टेक है बताओ, किसी ने कोई गड़बड़ की, कोई भूल की, मेरे अनुमति के बिना रोज के जितने मेंबर्स हैं उसके अलावा और कोई इसमें आया है? बोले नहीं 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 नहीं, सब डर गए। बोले हां बोलेंगे तो आज खैर नहीं, शायद महाप्रभु कीर्तन बरकन देंगे या डांटेंगे, हमें पता नहीं, हमने उनकी अवज्ञा की है आज्ञा की। बोले नहीं 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 नहीं, फिर महाप्रभु ने कीर्तन किया लेकिन वो भाव नहीं आ रहा है। फिर पूछा, फिर सब लोग ने कहा नहीं 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 नहीं। जैसे जब दो तीन बार हुआ तो भक्त लोग आगे डर के आए, बोले प्रभु एक भूल की है, आपकी आज्ञा की अवज्ञा की है, हमने एक शुद्ध शुद्ध ब्रह्मचारी को छुपाया, बड़ा शुद्ध है। बोले कैसे? बोले केवल दूध पी के रहता है, वो अन्न भी नहीं खाता है और कोई मसाला भी नहीं खाता है, केवल दूध, बड़ा सात्विक है, तो हमने सोचा थोड़ी सी आपकी कृपा मिल जाए। महाप्रभु ने कहा तुरंत बाहर निकालो, मेरे अनुमति के बिना उसको क्यों अंदर आने दिया। तो गोपाल सुन रहा था, वो भी बेचारा कांपता हुआ बाहर आया और डरते डरते चला गया और किवाड़ बंद कर दिया। और उसने जाते जाते क्या सोचा, यह नहीं है कि क्या खराब महाप्रभु है, ये बस मैंने तो लाभ ले लिया। कई बार हम देखते हैं भक्तों के जीवन में, मुझे तो ये लाभ मिल गया, दूसरे को भले कष्ट हो गया, मैंने तो दौड़ के धक्का मार के आगे से दर्शन कर लिया ना। हमारे श्रीनाथ जी में होता है ऐसा, मेवाड़ में, मेवाड़ में 365 दिन 24 घंटा आपको दर्शन एकदम विरार गाड़ी से भी ज्यादा भारी मारा मारी करके दर्शन मिलता है। उसके बिना दर्शन ही नहीं मिलता है। पता नहीं श्रीनाथ जी को यही पसंद है। एक बार एक एक, एक राजा की रानी को हुआ, आप तो यहां मेवाड़ के राजा हैं, चलिए हटाइए सब भीड़ हटाइए और हमको दर्शन कराइए, एकदम ठाट बाट से सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी गार्ड लगाइए। राजा ने कहा रहने दीजिए, श्रीनाथ जी की यही इच्छा है, श्रीनाथ जी को ऐसे ही दर्शन पसंद है, तुम रहने दो। बोले नहीं नहीं, आप राजा हैं और मेरे लिए जेड सिक्योरिटी यहां प्रबंध कीजिए। राजा ने कहा रहने दो, मैं भी रोज धक्के खा के लाइन में लग के ही दर्शन करता हूं, ये रहने दो। बोले नहीं, तो अभी रानी है ना, तो रानी के लिए जेड सिक्योरिटी लगाई सारी और उनको अलग दरवाजा दिया। और राजा अपने बिचारे साधारण लाइन में लग गए और श्रीनाथ जी का ऐसी जैसे ही पटखड़ हुड़ू सब भागे और रानी की जेड सिक्योरिटी भी उड़ा दी, रानी उड़ा दी, कुचल गया, सब खत्म हो गया। और उसको ऐसे ही दर्शन करना पड़ा, उसके कपड़े कहीं गए, गहने कहीं टूट के उड़ गए, दर्शन भी नहीं मिला। बाद में राजा को बोली क्या हो गया, तो बोले मैंने कहा था। फिर रानी वापस आम पब्लिक में आई, धक्के खाए तब दर्शन हो। तो भक्तों ने कहा कि महाप्रभु ये जो है एक गोपाल को माफ कर दीजिए। और गोपाल ने क्या सोचा, गोपाल पूर्णतया शरणागत हो गया। तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सही सुनना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। जब गोपाल को बाहर निकाला तो मन में सोचने लगा कि बहुत अच्छा किया महाप्रभु ने मेरे साथ, मैं योग्य ही नहीं था। क्या दूध पीना, क्योंकि महाप्रभु ने कहा क्या दूध पीने से कृष्ण प्रेम आता है, क्या दूध पीने से वो कृष्ण प्राप्ति के योग्य बन गया, तब तो सारे लोग केवल दूध पिएंगे और कृष्ण को बोलेंगे आप मुझे दर्शन दो, ये तो सिद्धांत नहीं है, निकालो इसको। तो ब्रह्मचारी भी वो सोचने लगा कि ये सही किया मेरे साथ, मैं तो अत्यंत पापी दुर्गुणी और अयोग्य व्यक्ति हूं, मेरा कोई अधिकार ही नहीं था कि साक्षात कृष्ण का महाप्रभु का दर्शन करूं, उनके कीर्तन का जो प्रेम कृष्ण प्रेम अप्लावित होता है, जो वर्षा है, उसका मैं कहां योग्य था, मेरे में कोई योग्यता नहीं थी, मेरा जो तिरस्कार हुआ अपमान हुआ सबके सामने, मैं उसी के योग्य था, मैं उसी के उचित था। परंतु एक संतोष हो गया, आज महाप्रभु का उस कृष्ण प्रेम की वर्षा का मुझे आनंद मिला, मुझे लाभ मिला और मैं भी अप्लावित हुआ। महाप्रभु आप धन्य हैं, आपकी कृपा अनन्य है, मैं अयोग्य हूं इसलिए आपने निकाल दे, यही सही है। जब इसके मन में यह विचार आया तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में बसने वाले महाप्रभु ने तुरंत भक्तों को आदेश किया, वो ब्रह्मचारी अब योग्य है, उसको कीर्तन में सम्मिलित करो। तो भगवान को प्राप्त करने का, प्रभु को प्रसन्न करने के कुछ और ही तरीके हैं जो भगवान के भक्त ही बता सकते हैं। कभी कभी कई बार भगवान भी बताते हैं कि कितनी तपस्या कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए गीता के द्वादश अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता, भगवान आपको क्या पसंद है, अर्जुन पूछते हैं आपको क्या पसंद है, आपकी दृष्टि में कौन श्रेष्ठ है। ये तो हम लोग चुनाव करते हैं, मैं योग करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं अमुक व्रत करूंगा, जबकि प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप चार नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, एकादशी जन्माष्टमी आदि का व्रत करो और हमारे हरे कृष्ण आंदोलन को प्रसारित करने में और प्रचार करने में सहायता करो तन मन धन से, और ज्यादा उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा वो हिंदी में प्रवचन है ना, उसमें ऐसे बोलते हैं प्रवचन। कहते हैं ज्यादा उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बहुत ज्यादा उस्ताद बन जाते हैं कि मैं ये व्रत करूंगा, ये पालन करूंगा। एक चार दिन पहले एक ब्रह्मचारी आया था श्रीनाथ धाम में, बोलता है मैं आपके यहां ज्वाइन कर सकता हूं, प्रसाद खाया तो बोले मैं ये नहीं खाता। मैंने कहा क्यों, ये गिरिराज है, शालीग्राम में भोग लगा है। बोले नहीं ये सब नमक वाला है, मैंने 2.5 साल से नमक त्याग कर दिया है। तो बोला तू रोज सुबह मंगल आरती गाता है, बोलते हाँ गाता है। मैं बोला चौथी पंक्ति क्या है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वदन तृप्तान हरि भक्त संग कृत्वैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, वो चार प्रकार का प्रसाद क्या है, हाँ, कृष्ण भी भगवद गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचन्याहम अन्न चतुर्विधम, कि मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में वैश्वानर नाम का जठरा अग्नि हूं और चार प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूं, पिज्जा, पेप्सी, आइसक्रीम एंड पिज्जा पेप्सी आइसक्रीम एंड और सॉस, पिज्जा के साथ सॉस चाहिए ना, तो कृष्ण ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं? पिज्जा पेप्सी आइसक्रीम सॉस कृष्ण खाते हैं या नहीं खाते? कृष्ण खाते हैं या नहीं खाते? यस या नो? नो, कौन बोलते हैं नो हाथ उठाइए, जितने लोग नो बोलना चाहते हैं और जितने लोग यस बोलना चाहते हैं हाथ उठाइए, नहीं यस या नो? यस, क्योंकि विदेश में हमारे मंदिर है और वहां सब ऐसे बनता है, इसलिए मेगास्टा पास्टा क्या क्या बोलता है वो चैतन्य वहां पे मायापुर में क्या क्या बनता है, तो विदेश में मंदिर है इसलिए नहीं। यस क्यों? यस तो कारण क्या, नो तो कारण क्या? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिताम प्राणपान समायुक्ता पचन्यहम अन्न चतुर्विधम, चार प्रकार के अन्न कृष्ण पचाते हैं, चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला और पीने वाला। तो पिज्जा खा सकते हैं, आइसक्रीम चूस सकते हैं, सॉस चाट सकते हैं और पेप्सी पी सकते हैं। पी नहीं सकते हैं पेप्सी नहीं, क्योंकि उसमें कोका है और कोका हमारे यहां निषेध है। ये तो ऐसे ही थोड़ा सा समझाने के लिए, प्रेम भाव से कृष्ण को कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। तो नमक नहीं खाता हूं, और फिर उसने क्या कहा आगे, मैं नमक नहीं खाता हूं और आगे क्या प्रोग्राम है? बोले मैं वृंदावन जाके राधा गोविंद महाराज की तरह संस्कृत का स्कॉलर बनना चाहता हूं, फिर आगे मैं राधा गोविंद महाराज की तरह भागवत आचार्य बनना चाहता हूं। अच्छा, नमक नहीं खाता है ढाल से 2.5 साल से, फिर संस्कृत भी सीखना है और राधा गोविंद महाराज की तरह भागवत आचार्य बनना है। अच्छा, फिर आगे, फिर भागवत आचार्य बनके मैं प्रभुपाद की मूवमेंट को फैलाना चाहता हूं। अच्छा, आगे मेरे गांव में स्कूल 8वीं तक के, उसको 10वीं तक करना चाहता हूं। तो मैंने कहा अच्छा, अब ये बता दीक्षा किससे लेना चाहता है? तो बोले गोपाल कृष्ण महाराज से भी ले सकता हूं और राधा गोविंद महाराज से भी ले सकता हूं। तो मैंने कहा एक बात कर, गुरु एक ही होते हैं, एक बात कर। तो उसको पता चल गया मैं गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य हूं, पहले ही पता है उसको। बोले नहीं, मैं दो में से किसी के पास ले सकता हूं। बोला एक बात कर, दो नहीं चलेगा, एक बात कर, मन में गुरु एक ही रख, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते, दीक्षा गुरु एक बात कर, दो बात नहीं, तू मूर्ख है, भले मेरे यहां आदमी नहीं, तू नहीं आएगा चलेगा, एक बात कर, पाखंडी नहीं चाहिए। नहीं, मेरा ज्यादा मन गोपाल कृष्ण महाराज से है, क्यों मैं बैठा हूं ना सामने। तो ऐसे कामना से अगर वो भागवत आचार्य भी बन जाए, लाभ नहीं होगा। हमें कृष्ण से पूछना चाहिए, कृष्ण आपको क्या पसंद है? तो अर्जुन पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परियुपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण ब्रैकेट में सिद्ध माना जाए? तब कृष्ण अपनी पसंद कहते हैं। आगे आप सब जानते ही हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो कृष्ण कहते हैं, मई अवेश्या मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मैं युक्त तमामता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है, कृष्ण का मत क्लियर है कि जो मेरे एक्चुअली इसमें साकार रूप जो है ये अनुवाद में ऐड किया है, श्लोक में ये शब्द नहीं है, पर आचार्यों को, कोई विद्वान पंडित ये ऑब्जेक्शन ले सकता है, कभी कभी बहुत पंडित लोगों से भीड़ना हो जाता है, बोलते हैं गीता में ये गीता एज इट इज नहीं है, ये गीता कहते हैं एज इट इज नहीं है। शायद एक चुनौती है, ये मेरे पास समय नहीं है, पद्मना प्रभु मुझे हेल्प कर सकते हैं कि 13वां जो अध्याय है उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है श्री भगवान उवाच करके एक श्लोक लिखा है, पर गीता प्रेस की गोरखपुर गीता में वो श्लोक नहीं है। तो उसने कहा ये गीता एज इट इज नहीं है, अब मुझे महाभारत रेफर करना पड़ेगा। पता ना प्रभु, है ना, और कोई रास्ता है? 13वां अध्याय में हमारी गीता में लिखा है पहला श्लोक श्री भगवान उवाच, और गीता प्रेस गोरखपुर की वो किताब में नहीं है। द्वितीय अध्याय में श्लोकों का क्रम ऊपर नीचे है, गीता प्रेस की गीता में या अन्य टीकाओं की गीता में श्लोकों का क्रम और दूसरा है। 29, 30, 28 से गड़बड़ शुरू होती है, द्वितीय अध्याय के 27वें श्लोक से। अब दूसरी गीता लेंगे तो ये ऐसे, खैर जो भी हो एक और विषय है। प्लीज प्रभु जी आप जरा रिसर्च करके बताना। तो एक दूसरा जवाब तो मुझे मिल गया मायापुर से कि प्रत्येक आचार्य का यह अधिकार होता है कि अपनी टीका जो लिखते हैं, मध्व की गीता में यह क्रम अलग है, रामानुजाचार्य की गीता में यह क्रम अलग है, और गीता प्रेस की गीता का क्रम अलग है। तो जो आचार्यगण ये टीका लिखते हैं उनका अधिकार है कि अपनी टीका के अनुरूप वो श्लोकों की लाइनों को, पंक्तियों को आगे पीछे कर सकते हैं, ये आचार्यों का मत है। तो वो तो पता चल गया, पर थोड़ा सा वो 13वें अध्याय में वो ढूंढना है, अभी महाभारत को रिफर करना पड़ेगा, पर थोड़ा समय नहीं है। तो आप प्लीज पद्मनाभ प्रभु जरा हेल्प कीजिएगा। तो भगवान का यह मत जो है क्लियर है कि साकार रूप, तो कोई कहेगा इसमें साकार रूप नहीं है श्लोक में, तो इसको कैसे समझना है कि भगवान साकार रूप में? अर्जुन के सामने कौन खड़ा है? भगवान कृष्ण साकार रूप में खड़े हैं या निराकार रूप में? कॉमन सेंस की बात है ये। कोई कह सकता है विद्वान पंडित के देखो इसमें साकार नहीं है, आपने प्रभुपाद ने इसमें लिख दिया है कि मेरा साकार स्वरूप। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में, तो श्लोक में साकार रूप शब्द नहीं है। मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया परियेतास्ते मैं युक्त आत्मा मता मैं युक्त तमा मता, तो इसमें साकार रूप कहां है? ऐसा नहीं, ये नहीं, ये गीता एज इट इज है। कॉमन सेंस की बात है कि भगवान स्वयं खड़े रहकर अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरे रूप में, तो भगवान यहां कुछ गोला है क्या? ज्योति प्रकाश का कुछ गोला वोला है क्या? और जैसे देवताओं को और गाय को और ब्रह्मा जी को केवल प्रकाश का पुंज और शब्द सुनाई दिया, ऐसा तो नहीं है। अर्जुन के सामने व्यक्तिगत स्वरूप साकार स्वरूप में खड़े हैं और उनको कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप में जो मन लगाकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरी जो सेवा पूजा अर्चना करते हैं, तो इसलिए अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखा मेरे साकार रूप में। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या विरोध की बात है? तो स्टेटमेंट जो है क्लियर है कि हमें कैसे करना है। और अंत में अभी का प्रमाण अगर हम देखने जाए, जैसे सौभ्री मुनि का प्रसंग चल रहा है, तो एक बहुत ही सुंदर हमारे एक आचार्य हैं, इस्कॉन के वर्तमान आचार्य और जीबीसी गुरु हैं, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, उनके जीवनी की एक किताब आई है अनोखा सफर, बहुत सुंदर किताब है। मेरा अनुरोध है आप सब भक्तों से अवश्य पढ़ें उसको। उसमें लिखा है एक अमरीकी सन्यासी की आत्मकथा, अनोखा सफर, बहुत सुंदर किताब है। और इस किताब को मैंने कैसे पढ़ा, एक दो अध्याय शुरुआत के बोरिंग लगे, मैंने कहा बाद में पढ़ूंगा, लेकिन वसुमान प्रभु ने बताया कुछ कुछ प्रसंग के वर्णन के बीच बीच में से कहीं सुना या पढ़ा, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ महाराज के साथ, तो मुझे थोड़ी उत्कंठा हुई, जिज्ञासा हुई। फिर मैंने देखा मेरी बहन पढ़ रही है, वो तो महाविष्णु स्वामी महाराज की शिष्य है, पर वो पढ़ रही है, पढ़ रही है तो इतनी एकाग्र भाव से पढ़ रही है, तो उसको देख के मैंने उसके यहां से किताब ले लिया और आगे पढ़ना शुरू किया। तो उसको कैसे पढ़ा मालूम है? प्रसाद लेते लेते ऐसे ऐसे पढ़ा, सोना है तो सोने के पहले सोते सोते ऐसे पढ़ा, मतलब जब तक देह धर्म खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको पढ़ते रहा, पढ़ा क्या पी गया। तो उनके प्रसंग में कैसे आता है कि जब वे ऋषिकेश की गुफा में जब तपस्या सीख रहे थे मायावादियों से, ब्रह्मवादियों से, योगियों से, और गंगा में एक पत्थर है ऋषिकेश में आज भी, उस पत्थर पे बैठ के वो ध्यान करते थे, और ऋषिकेश की गुफा में बहुत ही संकीर्ण छोटी सी गुफा में वो ध्यान करते थे, और एक ब्लैक कोबरा जो विश्व का सबसे विषैला सांप है किसी को नहीं छोड़ता, उसके साथ में तो डर गए, बोले इसके साथ कैसे रहें। उन्होंने जो गुफा का चुनाव किया तो पास ही में एक योगी ब्रह्मवादी रहते थे, उनसे कहा तो उन्होंने उनको सिखाया कि इन पशुओं पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए, इनके साथ कैसे रहा जाए, कैसे अपने मन को एकाग्र किया जाए, इन पे विजय कैसे प्राप्त करनी है वो सीखें। उन्होंने ब्लैक कोबरा को कंट्रोल भी किया, गंगा के प्रवाहों को झेल करके वो पत्थर पे बैठ के उन्होंने ध्यान भी किया और गंगा की इतनी कृपा हुई कि गंगा की लहरों से तरंगों से उनको हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि सुनाई दी। और यह संभव कैसे हुआ, यह चमत्कार नहीं है। वो जब घर से भागे थे हिप्पी वेश में अपने दोस्तों के साथ, उनमें से एक दोस्त आया भी था पिछले साल वो अवधेश दुबे प्रभु की शादी में, क्या नाम था उसका, गेरी, गेरी आया था वो, मैंने देखा था उसके हाथ में फ्रैक्चर आया था, वो बहुत बड़ा पहलवान भी था। तीन दोस्त भागे थे वो, तो पिछले साल उनकी शादी कराई थी उसमें आए थे वो, गैरी भी आए थे। ये जब तीन दोस्त भागे थे तो सबसे पहले वो जब भागे तो उनको एक पर्चा मिला था, तो पर्चा ऐसे पड़ा और झोले में डाल दिया, और फिर कहां कहां से बिना पासपोर्ट बिना पैसे बिना टिकट कहां कहां से कैसी कैसी भयंकर स्थिति में और कितनी बार जान के खतरे पे, बहुत बड़ी कथा है, कैसे कैसे विकट परिस्थितियों से लास्ट में गिरगांव चौपाटी में भी प्रभुपा जी का पंडाल प्रोग्राम था, सॉरी क्रॉस मैदान में मुंबई में प्रभुपा जी के प्रोग्राम वहां होते थे, तो उसमें वो लास्ट पंक्ति में बैठे थे हिप्पी के रूप में, और प्रभुपा जी ने उनको देखकर बुलाया, उस लड़के को बुलाओ यहां, और उनको बुला के स्टेज पे बिठाया, और शिष्यों ने कहा हमने इसको कृष्ण बुक वगैरह दी थी, वो कहां गई पता नहीं, बोले वो कोई चोर चुरा के ले गया। फिर उनको किताबें दी गई, फिर वो वृंदावन गए, बन महाराज के आश्रम में रहे, कई जगह भटके घूमे, और अंत में आज हम परिणाम देखते हैं कि आज वो एक कृष्ण की सेवा में गुरु शिष्य परंपरा में हजारों लाखों जीवों का उद्धार कर रहे हैं। तो जानते हो पहला पर्चा क्या था, वो जब घर से भागे, वो पहला पर्चा था हरे कृष्ण आंदोलन के पंडाल प्रोग्राम, हरे कृष्ण उत्सव फेस्टिवल का निमंत्रण पत्रिका लीफलेट था वो, और वहां से प्रभुपाद की कृपा उनको मिली थी। प्रभुपाद की नियति थी वो कि वो हिप्पी लड़का मेरा शिष्य बनेगा। नहीं तो आज वृंदावन में भी कितने सन्यासियों से मिले, कितने बन महाराज के आश्रम में रहे, कहीं गति नहीं हुई, प्रभुपाद के चरणों में उनका आश्रय हुआ। तो जब ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों में आश्रय मिलता है हमें, शुद्ध भक्तों की अनुकंपा अनुग्रह एवं कृपा मिलती है, तब हमें कृष्ण मिलता है, और तब हम कृष्ण का नाम गुण लीला रूप धाम परिकर आदि के विषय में कुछ बोल सकते हैं, सुन सकते हैं या समझ सकते हैं। ऐसे पानी में बैठ के या दूध पी के या नमक त्याग के या पेड़ में उल्टा लटक के किसी भी प्रकार से कृष्ण प्रेम नहीं आता, और जब तक कृष्ण प्रेम नहीं आता हृदय में तब तक हमें कृष्ण नहीं मिलते, क्योंकि इन सब तपस्याओं से हमारा हृदय जो है ना कठोर और शुष्क बन जाता है। और कृष्ण तो रसराज हैं, कृष्ण प्रेम का उद्गम है तो शुष्क, और कृष्ण अति मृदु हैं, कृष्ण सुकुमार हैं, तो ऐसे तप करके 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 हृदय कठोर बन जाए, पाषाण युक्त पाषाण जैसा कठोर हृदय बन जाए तो कृष्ण कैसे आएंगे। हम लोग गाते ना, मम मन मंदिरे रहो निशि दीन कृष्ण मुरारी सी कृष्ण मुरारी। तो मन मंदिर में कृष्ण कैसे आएंगे, जब मन पवित्र होगा, जब मन में कृष्ण प्रेम होगा, जब कृष्ण की प्राप्ति की कृष्ण की सेवा की उत्कट इच्छा होगी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तये निर्विषय मना, कि हमारा मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो, जब तक विषय से मन बाधित है बंधाय विषया संगो तब तक हम बंधन में रहेंगे। मुक्तये निर्विषय मना, तो मन निर्विषय कैसे होगा, कोई मन ऐसा तो है नहीं कि उसको पकड़ के डांट के झपट के पेड़ में उल्टा लटका के पानी में बैठ के नमक छोड़ के दूध पी के मन किसी प्रकार मानता ही नहीं है। कितने उदाहरण है हमारे सामने, जब मौका मिला बस फट से कूद जाता है बंदर जैसा, तो कैसे करें। तो उसको कृष्ण प्रेम की तालीम देनी होगी, साधु गुरु वैष्णव और भागवत के मार्गदर्शन से उसको कृष्ण प्रेम की तालीम देनी होगी, तब जाकर कृष्ण प्रेम कृष्ण अनुराग होगा और तब कृष्ण मिलेंगे, अन्य ऐसे उपायों से संभव नहीं है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई जिज्ञासा या प्रश्न या कहीं मेरी गलती हुई कोई टिप्पणी करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या की, कलयुग में सभी शूद्र हैं और तपो दिव्य का पुत्रम, ये जो पंचम स्कंद में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज को ये जो उपदेश करते हैं, तो उस तपस्या का क्या अर्थ है? तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में स्पष्ट कर चुके हैं, तात्पर्य में कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, और मैंने इस वक्तव्य में भी कहा कि ज्यादा उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है। कलयुग में तपस्या का अर्थ है चार नियम का पालन, क्योंकि कली को परीक्षित महाराज ने स्थान दिया था इसी चार स्थान में, नशा, जुआ, मांसाहार और व्यभिचार। तो इन चार नियमों का पालन करें, 16 माला का जप करें, एकादशी, जन्माष्टमी आदि व्रतों को धारण करें, ये हमारे लिए तपस्या है। और विशेष रूप से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना है, इतना करें, ये हमारे कलयुग के लिए वास्तव में तपस्या है, वास्तव में ये इतना तपस्या है। और प्रसाद नियंत्रित रूप से खाएं, अनियंत्रित रूप से नहीं, मैं मुझे बोलने का ये अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने इस कोण में बहुत अनियंत्रित प्रसाद खाया, दबा दबा के फिर वही पनीर सब्जी और आम रस और पर अब नहीं खाता हूं। मेरा गुरु भाई ये लोहिताक्ष प्रभु जानता है वो, और एक वो हमारे काका थे, क्या नाम वो, नहीं नहीं वो रवजी भाई, वो लास्ट में जो बेचता था मेरी थाली में उलेट देते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ वर्ष के बाद नियंत्रित कर लेना चाहिए, तो बीमारी नहीं होगी, और प्रभुपाद की कृपा से अभी तक कोई बीमारी नहीं है। तो इसलिए प्रभु जी जो कलयुग में तपस्या है यही तपस्या, इतना करेंगे प्रभु जी, तपस्या का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, तो हमें यह देखना चाहिए अंत में कि हमें कृष्ण प्रेम कैसे मिले। हां, शूद्र होके भी देखिए कलयुग कहां, यह अच्छा प्रश्न है, कलयुग का अर्थ है कलो शूद्र संभव, कलयुग में प्राय सभी शूद्र हैं, कलयुग में प्राय सभी शूद्र हैं। क्यों शूद्र हैं कलयुग में सब शूद्र क्यों हैं? क्योंकि प्राय हम में से किसी का भी जन्म संस्कार के साथ नहीं हुआ, हम में से सभी का जन्म इंद्रिय तृप्ति के कारण हुआ है। मुझे इस इस्कॉन के 25 वर्ष में एक बहुत ही सुंदर भक्त है, एक ही भक्त मिला मुझे 25 वर्ष में, जिसने अपने विवाह के इतने सालों के बाद भी उसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित किया है और सुंदर भागवत कथा करता है और भागवत पाठ करता है। और मुझे पूछा एक ही भक्त ने कि प्रभु जी गर्भाधान संस्कार किसे कहते हैं और वो कैसे किया जाता है? इतने सारे भक्तों ने, दीक्षित भक्तों ने, गृहस्थी हुए, शायद अन्यों से पूछा होगा, पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि किसी का भी गर्भाधान संस्कार से नहीं हुआ। मेरा जन्म भी हुआ है कि नहीं मुझे क्या पता गर्भाधान संस्कार से। तो इसलिए जो बिना संस्कार का जो होता है वो अपवित्र है, इसलिए कलयुग में कलो शूद्र संभव, सभी शूद्र हैं। संस्कारे उद्भवे द्विज, संस्कार से वो द्विज बनता है। अध्यायेन भवेत विप्र, फिर बाद में वो स्वाध्याय करके संस्कार, उसको उपनयन संस्कार दिया जाता है। संस्कारे उद्भवे द्विज, बाद में उसका उपनयन संस्कार होता है तब जाके वो द्विज बनता है, और द्विज बनके स्वाध्याये भवेत विप्र, तब जाके वो स्वाध्याय, तपस्या, व्रत, नियम आदि का पालन करके वो गुरु की निश्रा में वो विप्र बनता है। और ये करते 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 ब्रह्म इति जानन्ति ब्राह्मण, तब वो ब्राह्मण बनता है। और इसीलिए प्रभुपाद की सुंदर व्यवस्था है कि हमारे इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ हरे कृष्ण आंदोलन में चाहे जो भी शूद्र हो, पापी हो, अधम हो, चांडाल हो, यहां आइए, प्रसाद खाइए, कृष्ण की सेवा कीजिए, साधु संगति कीजिए, हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और ब्रह्मर्षि बन जाइए, ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मण श्रेष्ठ बनिए, हां कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र केने नय जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होय। और मंत्र तंत्र विशारद, हां क्या है, षटकर्मणा निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवांश गुरु नर स्याद वैष्णवांश पचो गुरु। प्रभुपाद जी ने ऐसे अपने मन से नहीं शास्त्र से कोटेशन दिया कि कोई ब्राह्मण षटकर्मणा निपुणो विप्र ध्यान स्वाध्याय आचमन स्नान आदि जो ब्राह्मण उचित छह कर्म है जो प्रति ब्राह्मण को प्रतिदिन नित्य करना ही चाहिए, संध्या वंदना आदि दान तपस्या जो छह कर्म है ब्राह्मण उचित, षटकर्मणा निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद, विशारद अर्थ स्कॉलर ग्रेट स्कॉलर मंत्र तंत्र में, मंत्र तंत्र विशारद परंतु अवैष्णवांश गुरु नर स्याद, परंतु अगर वो वैष्णव नहीं है तो गुरु बनने योग्य नहीं है, वो भगवान का भक्त नहीं है तो गुरु बनने योग्य नहीं, परंतु वैष्णवाम स्वपचो गुरु, स्वपच माने कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी अगर है और अगर वो वैष्णव बन जाता है तो होम हवन यज्ञ यागादि करके आचार्य के आसन पर बैठकर वो गुरु बन के दीक्षा दे सकता है, ये शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में शूद्र अधमा अधम पतित सभी का स्वीकार किया जाता है। हां ये प्रोसेस वैदिक युगों में ऐसे होता था कि वहां पर व्यवस्था ऐसी होती थी कि आप आपके स्थान में रहकर आपकी सेवा कीजिए आपको भगवत प्राप्ति होगी। कलयुग में इतना सब मिक्स, इतना गंदा, इतना कॉन्टामिनेटेड हो गया है, इतना अपवित्र हो गया है, इसलिए यह महत कृपा है। हां हां महत कृपा है, क्या है वो महत कृपा, हां हां वो सुंदर श्लोक है ना, नहीं नहीं वो कले दोषो निधे राजन अस्तिर एको महान गुण कीर्तनादि कृष्णस्य मुक्त एवं परम व्रजेत, कि कृष्ण कीर्तन से कलयुग में, क्योंकि परीक्षित महाराज ने जब कहा कि कलयुग में तुम्हें मार दूंगा, तुम इतने सारे लोगों को भ्रष्ट अधर्मी और पापी बना रहे हो, तो कहा ठीक है आप मुझे मारिए, परंतु कई युगों से जो लोग तपस्या करके भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं ऐसे करोड़ों जीव अभी मेरे युग में कृष्ण कीर्तन करके भगवत धाम जा सकते हैं, आप उनके मार्ग में बाधा बनोगे, तो आप सोच लीजिए मुझे मारना है तो मार दीजिए, परंतु मेरे युग का एक महान गुण है कि कीर्तन आदि। तो प्राचीन युग में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर शूद्र ब्राह्मण की सेवा करें, देखिए राजा भी होते थे वो वानप्रस्थ आश्रम लेते थे, तो जब वो वन में जाके वानप्रस्थ आश्रम लें तो शूद्र जो वहां है आदिवासी या जो भी चंडाल भंगी हरिजन चमार वो उनकी सेवा करें, क्योंकि वो मुनि है ना, वो ऋषि बन रहा है वो मुनि बन रहा है उनकी सेवा करने से। और उसका उदाहरण है नारद मुनि, प्राचीन युग में नारद मुनि शूद्र पुत्र थे पूर्व जन्म में, तो शूद्र पुत्र होकर उन्होंने क्या किया, वैष्णवों की सेवा की, तो दूसरे जन्म में ब्राह्मणों का ब्रह्मा का पुत्र मानस पुत्र और कितना बड़े महाभागवत हुए नारद जी, है ना। तो वैदिक युग में भी ये उदाहरण है, तो उस समय नारद जी ने ये नहीं कहा चलो अभी मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं मैं भी ध्यान करूं पेड़ में उल्टा लटक जाऊं, नहीं, उन्होंने शूद्र उचित कार्य किए, मुनियों के लिए ब्राह्मणों के लिए यज्ञों की लकड़ी लाना, गोबर से लेपना, घी की व्यवस्था करना, वन में जाके कंदमूल और फल लाना और उनका उच्चिष्ट खाना, ये भी नहीं कि मेरे प्रसाद की पत्तल पहले अलग करो, जो ब्राह्मण संतुष्ट होकर भरपेट खाए जो उच्चिष्ट बचा उसको खाया, तो उनको सीधा मिल गया ना उत्क्रांति का नियम, सीधा प्रमोशन, शूद्र से सीधे ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ प्रथम ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ प्रथम ब्राह्मण सीधा ब्रह्मा जी, कितना प्रमोशन हो गया सीधा, क्यों, उन्होंने शूद्र अवस्था में रहकर अपनी मर्यादा धर्म का पालन किया, अपनी मर्यादा में रहकर धर्म का पालन किया, उनका प्रमोशन हो गया। इसलिए रामचंद्र जी को यह पसंद नहीं आया कि यह मर्यादा उल्लंघन, शूद्र है तो अपनी अवस्था में रहे तेरी मुक्ति होगी, तो तू फिर क्यों उस्ताद बनने जा रहा है, क्यों पेड़ में उल्टा लटक के नीचे अग्नि लगाकर तपस्या कर रहा है, ब्राह्मणों की सेवा कर मुक्ति मिल जाएगी, मेरे दर्शन हो जाएंगे। शबरी शूद्र थी उसको दर्शन दिया कि नहीं दिया, मर्यादा में रहकर मातंग ऋषि की सेवा की शबरी ने, है ना, तो मातंग ऋषि ने वरदान दिया, बस जा एक दिन तुझे राम का दर्शन होगा। तो किशोरी अवस्था से लेके युवा युवा से लेके बुढ़ापे तक विश्वास किया गुरु के वाक्य में, गुरु मुख पद्म वाक्य चितते करी आय किया आरना करी है मने आशा। तो शूद्र अपनी मर्यादा मेरे के मर्यादा धर्म का पालन किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हुए। कितने उदाहरण हैं। तो कोई आवश्यक नहीं था कि उस त्रेता युग में जाकर वो ऋषि मुनि और ब्राह्मणों का जो धर्म है उसका पालन, इसलिए रामचंद्र जी ने जाके तलवार से वध कर दिया। कोई अनुचित कार्य नहीं किया। भगवान कभी अनुचित कार्य नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर भगवान ही करेंगे तो फिर वेद वेद सारा गलत हो जाएगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस जन्माष्टमी प्रभु को, जिन्होंने इतना सुंदर ढंग से हमें श्रीमद् भागवतम श्रवण कराया। तो एक बार